एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम दर्शन की दुनिया की एक ऐसी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब अच्छे अच्छे दार्शनिक भी थोड़ा घबरा जाते हैं।
जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल।
हाँ, और कहते हैं कि हेगल को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है।
बिल्कुल, उनके शब्द मुश्किल हैं, पर अगर आपने उन्हें सुलझा लिया तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल सकता है।
और इसी पहेली को सुलझाने में आज हमारी मदद करेगी पीटर सिंगर की किताब हेगल अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
ये किताब आज भी बहुत जरूरी है क्योंकि हेगल के विचार, चाहे वो आजादी हो, इतिहास का मकसद हो या समाज में हमारी जगह,
वो आज भी हमारी दुनिया पर गहरी छाप छोड़ते हैं।
मार्क्सवाद से लेकर आज के सामाजिक आंदोलनों तक, मतलब हेगल हर जगह है। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं और इस मुश्किल लेकिन दिलचस्प दार्शनिक को समझने की कोशिश करते हैं।
शुरू करने से पहले लेखक के बारे में बात करना जरूरी है। पीटर सिंगर और हेगल, ये जोड़ी थोड़ी अजीब लगती है ना?
बहुत अजीब। पीटर सिंगर ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं।
हाँ, और वो जाने जाते हैं अपनी साफ और सीधी बात के लिए, खासकर व्यवहारिक नैतिकता के मुद्दों पर।
मैंने उनकी किताब एनिमल लिबरेशन के बारे में सुना है।
जी, जिसने आधुनिक पशु अधिकार आंदोलन की नींव रखी थी।
वो उपयोगितावाद मतलब यूटिलिटेरियनिज्म के समर्थक हैं,
जिसका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा भलाई करना और दुख को कम करना।
तो एक मिनट, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। पीटर सिंगर जो इतनी सीधी साफ बात के लिए जाने जाते हैं, वो हेगल पर लिख रहे हैं। हेगल तो अपनी मुश्किल भाषा के लिए बदनाम है।
और शायद यही बात इस किताब को खास बनाती है। सिंगर एक शिष्य की तरह हेगल के रहस्य को और नहीं बढ़ाते।
अच्छा,
वो एक एनालिस्ट की तरह हैं, जो एक बहुत जटिल मशीन को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके हमें समझाते हैं कि देखो ये ऐसे काम करती है।
तो उनका नजरिया हमें ये समझने में मदद करता है कि हेगल के विचारों का असल दुनिया पर क्या असर हुआ।
हाँ, खासकर मार्क्स के जरिए।
तो ये किताब एक तरह से हेगल के विचारों को आसान बनाने की कोशिश है।
बिल्कुल, आप इसे दर्शन के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक गाइडबुक समझ सकते हैं।
अच्छा।
सिंगर का मुख्य तर्क ये है कि हेगल का पूरा दर्शन गाइस्ट।
गाइस्ट ये क्या है?
इसे आप एक तरह की कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या पूरे ब्रह्मांड की मिलीजुली सोच कह सकते हैं।
यानी हेगल के लिए ये दुनिया सिर्फ बेजान चीजों का ढेर नहीं है।
नहीं, उनके लिए चेतना या आत्मा ही इसकी असली हकीकत है, जो धीरे धीरे खुद को समझ रही है।
मतलब वास्तविकता कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक चलती फिरती, एक गतिशील प्रक्रिया है।
सही पकड़ा, एक तर्क पर आधारित प्रक्रिया जिसका एक मकसद है।
और इस प्रक्रिया का इंजन है हेगल का सबसे प्रसिद्ध टूल,
द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिक।
तो चलिए इस इंजन को स्टार्ट करते हैं। सिंगर बताते हैं कि हेगल को समझने के लिए उनके दौर को समझना जरूरी है, फ्रांसीसी क्रांति।
हाँ, उसका उनपे बहुत गहरा असर पड़ा। उनके लिए फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी।
तो क्या थी?
ये एक दार्शनिक घटना थी। मतलब पहली बार इंसान कह रहा था कि हम तर्क और आजादी के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे,
किसी राजा या चर्च के हुक्म पर नहीं।
बिल्कुल, लेकिन फिर उस क्रांति में आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर भी तो आया।
हाँ, जहाँ हजारों लोगों को मार दिया गया।
और यहीं से हेगल का एक बड़ा आइडिया निकलता है। उन्होंने देखा कि सिर्फ ख्याली अमूर्त आजादी कितनी खतरनाक हो सकती है।
और इसी उथल पुथल के बीच एक और दिलचस्प किरदार आता है, नेपोलियन।
हाँ, हेगल ने नेपोलियन को जेना शहर में घोड़े पर जाते हुए देखा और उसे घोड़े पर सवार विश्वात्मा कहा।
वर्ल्ड सोल ऑन हॉर्सबैक, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो नेपोलियन के फैन थे?
फैन नहीं, वो उसे एक विश्व ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह देख रहे थे।
मतलब?
मतलब एक ऐसा इंसान जो कर तो अपनी मर्जी का रहा था, लेकिन अनजाने में वो इतिहास के एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा था। वो पुराने सामंती यूरोप को तोड़कर वहां तर्क और नए कानून फैला रहा था।
अच्छा, तो अब हम उस मशहूर द्वंद्ववाद या डायलेक्टिक पर आ गए।
जी,
इसे हमेशा थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की तरह समझाया जाता है।
जी,
क्या ये इतना ही सरल है?
नहीं नहीं, सिंगर असल में कहते हैं कि ये फॉर्मूला चीजों को कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है।
तो फिर असल प्रक्रिया क्या है?
ये एक ज्यादा स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोचिए कोई भी विचार या स्थिति,
जिसे हम थीसिस कह सकते हैं।
हाँ, थीसिस, वो हमेशा एक तरफा होती है, उसमें कुछ कमी होती है, और अपनी इसी कमी की वजह से वो अपने विरोधी विचार यानी एंटीथीसिस को जन्म देती है
और फिर दोनों में टकराव होता है।
हाँ, और इस टकराव से विनाश नहीं होता बल्कि एक ऊंची और बेहतर अवस्था पैदा होती है, सिंथेसिस।
और ये सिंथेसिस दोनों के सच को अपने अंदर समेट लेता है।
बिल्कुल, और उनसे आगे निकल जाता है और फिर ये नया सिंथेसिस खुद एक थीसिस बन जाता है और ये चक्र चलता रहता है।
ये प्रगति का इंजन है।
सही।
ठीक है, ये सुनने में तो एक थ्योरी लगती है, इसका कोई ठोस उदाहरण है क्या?
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हेगल की किताब फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में मिलता है।
अच्छा।
और यहाँ हम हेगल के उस सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर आते हैं जिसे सुनकर शक्ति यानी पार के बारे में हमारी पूरी सोच पलट सकती है।
आप उस मास्टर स्लेव यानी मालिक गुलाम वाली कहानी की बात कर रहे हैं।
हाँ।
मैंने सुना है कि उनका कहना है कि जो मालिक है असल में वही सबसे बड़ा गुलाम है। ये तो एकदम उल्टा लगता है, क्या है ये कहानी?
कहानी शुरू होती है जब दो चेतनाएं पहली बार मिलती हैं। दोनों को अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे से मान्यता रिकॉग्निशन चाहिए।
मतलब मैं हूँ ये जानने के लिए जरूरी है कि कोई दूसरा मुझे तुम के रूप में देखे और स्वीकार करे।
बिल्कुल, हमारा वजूद दूसरे की नजर पे टिका है।
गहरी बात है।
और इस मान्यता पाने के लिए वो एक जानलेवा संघर्ष में उतरते हैं। एक चेतना मौत से नहीं डरती, वो मालिक बनती है। दूसरी मौत से डर जाती है और हार मान लेती है,
वो गुलाम बन जाती है।
हाँ,
तो मालिक जीत गया, उसे मान्यता मिल गई, कहानी खत्म?
नहीं, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। मालिक को जो मान्यता मिली है वो एक ऐसे गुलाम से मिली है जिसे वो खुद पूरा इंसान नहीं समझता।
तो वो मान्यता तो बेकार है,
किसी काम की नहीं। वो सिर्फ गुलाम के बनाए सामान का इस्तेमाल करता है, खुद कुछ नहीं बनाता। उसकी जिंदगी एक तरह से खाली हो जाती है।
और गुलाम का क्या होता है?
गुलाम दुनिया पर काम करता है, वो चीजों को आकार देता है, प्रकृति को बदलता है।
अच्छा।
अपने काम के जरिए वो अपनी चेतना को उन चीजों में साकार होते हुए देखता है जो वो बनाता है, वो अपनी ताकत को पहचानता है।
तो अंत में गुलाम ही अपने काम के जरिए सच्ची आत्मचेतना और आजादी हासिल करता है।
बिल्कुल,
ये तो कमाल की बात है। मतलब बनाने में, काम करने में एक अलग तरह की आजादी है।
आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। हेगल यही कह रहे हैं, सच्ची आजादी किसी पर हुक्म चलाने में नहीं बल्कि दुनिया पर मेहनत करके अपनी छाप छोड़ने में है।
तो ये द्वंद्ववाद सिर्फ दो लोगों के बीच काम नहीं करता?
नहीं, ये पूरे इतिहास पर भी लागू होता है।
हेगल के लिए इतिहास बस घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है?
नहीं, इसका एक लक्ष्य है। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, दुनिया का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के अलावा और कुछ नहीं है।
मतलब इतिहास धीरे धीरे हमें ज्यादा आजादी की तरफ ले जा रहा है।
हाँ, और यह प्रगति अलग अलग सभ्यताओं से होकर गुजरती है। जैसे वो कहते हैं कि प्राचीन पूर्वी साम्राज्यों में सिर्फ एक व्यक्ति आजाद था, राजा।
फिर ग्रीक और रोमन दुनिया में कुछ लोग आजाद थे, नागरिक, पर गुलाम नहीं।
सही। और फिर जर्मेनिक ईसाई दुनिया में ये सिद्धांत माना गया कि सभी इंसान आजाद हैं, कम से कम सिद्धांत तो हैं।
और यहीं से हेगल अपने राजनीतिक दर्शन पर आते हैं।
हाँ।
उनकी राज्य यानी स्टेट के बारे में क्या राय थी?
हेगल के लिए सच्ची आजादी का मतलब जो मन में आए वो करना नहीं है।
वो इसे बचकाना मानते हैं।
हाँ, असली ठोस आजादी तब मिलती है जब एक इंसान एक तर्कसंगत समाज में रहता है और अपनी इच्छाओं को समाज के नैतिक सिद्धांतों के साथ जोड़ लेता है, और राज्य इन्हीं सिद्धांतों का सबसे बड़ा रूप है।
एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक भी लगता है। क्या कोई तानाशाही सरकार ये नहीं कह सकती कि राज्य ही सच्ची आजादी है, इसलिए सवाल मत पूछो?
ये हेगल के सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है और सिंगर इससे बचते नहीं है।
अच्छा।
वो बताते हैं कि हेगल एक ऐसे तर्कसंगत राज्य की बात कर रहे थे जहां कानून सबके लिए बराबर हो, लेकिन ये सच है कि उनके विचारों का इस्तेमाल बाद में तानाशाही सरकारों ने अपने फायदे के लिए किया,
और शायद इसीलिए उनके बाद उनके अनुयायी दो गुटों में बट गए।
बिल्कुल, एक तरफ थे रूढ़िवादी और दूसरी तरफ थे कट्टरपंथी, जिनमें सबसे मशहूर थे
कार्ल मार्क्स।
हाँ।
मैंने सुना है कि मार्क्स ने हेगल को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने हेगल के विचारों का क्या किया?
ये एक बहुत बड़ा जंप है, पर जरूरी है। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्ववाद के इंजन को तो ले लिया, लेकिन कहा कि हेगल का पूरा सिस्टम उल्टा है। हेगल के लिए इतिहास को विचार या चेतना आगे बढ़ाती है। मार्क्स ने कहा नहीं,
इतिहास को भौतिक हालात चलाते हैं।
हाँ, मतलब पैसा, जमीन और उत्पादन के साधन। तो जो संघर्ष हेगल के यहाँ विचारों में था वो मार्क्स के लिए समाज के क्लास यानी अमीर और गरीब के बीच का असल संघर्ष बन गया।
तो क्या ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने ही हेगल को असल दुनिया में इतना प्रासंगिक बनाया?
काफी हद तक
हाँ।
मार्क्स ने हेगल के औजारों का इस्तेमाल करके दुनिया को बदलने का एक नक्शा तैयार कर दिया। उन्होंने हेगल के दर्शन को किताबों से निकालकर सड़कों और फैक्ट्रियों तक पहुँचा दिया।
ठीक है, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक निकालने हों तो क्या होंगे? मेरे लिए पहला तो यही है कि प्रगति हमेशा टकराव से होती है।
सही, विरोधाभास कोई खत्म करने वाली चीज नहीं बल्कि कुछ नया बनाने के लिए जरूरी है।
हाँ।
मेरे लिए दूसरा बड़ा आइडिया है मान्यता का महत्व। हमारा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ये आज भी सामाजिक न्याय की हर बहस के केंद्र में है।
यस है ना?
बिल्कुल।
तीसरा, आजादी का गहरा मतलब। सच्ची आजादी सिर्फ अपनी मर्जी चलाने का नाम नहीं है
बल्कि एक ऐसे समाज में अपनी जिम्मेदारियों को समझना है जहां सबकी आजादी सुरक्षित हो।
यह आज की अधिकार बनाम कर्तव्य की बहस को एक नया एंगल देता है।
और चौथा, ये आइडिया के इतिहास का एक मकसद है। भले ही दुनिया में बहुत उथल पुथल दिखे, हेगल का मानना था कि एक बड़ी तस्वीर है जिसमें चीजें धीरे धीरे ज्यादा आजादी और समझ की तरफ बढ़ रही हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे जो वास्तविक है वो तर्कसंगत है और जो तर्कसंगत है वो वास्तविक है।
ये सुनने में बहुत भारी लगता है।
इसका असली मतलब ये है कि हकीकत के अंदर एक लॉजिक है, एक ढांचा है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है।
और दूसरी तरफ जो विचार सच में तर्कसंगत होते हैं उनमें दुनिया में हकीकत बनने की ताकत होती है।
वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहते।
एक और विचार, दुनिया का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के अलावा और कुछ नहीं है।
ये एक बहुत ताकतवर बयान है। ये बताता है कि इतिहास का अंतिम लक्ष्य किसी एक देश की जीत नहीं बल्कि आजादी के विचार का पूरी दुनिया में फैलना है।
और मास्टर स्लेव डायलेक्टिक का सार, सच्ची स्वतंत्रता दूसरे पर हावी होकर नहीं बल्कि मेहनत के अनुशासन और दुनिया को बदलने से जीती जाती है। ये शक्ति के बारे में हमारी सोच को ही पलट देता है।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं?
जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो द्वंद्वात्मक सोच, मतलब ऑफिस की मीटिंग में अगर दो लोग बिल्कुल अलग अलग आइडिया दे रहे हैं
तो उन्हें दुश्मन समझने के बजाय ये सोचें कि शायद इन दोनों के टकराव से एक तीसरा बेहतर आइडिया निकल सकता है।
बिल्कुल, ये टकराव को रचनात्मक बना देता है।
और आजादी की गहरी परिभाषा भी सोचने लायक है।
हाँ, क्या आजादी का मतलब सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना है या एक ऐसे समाज में योगदान देना जहाँ सब सुरक्षित रूप से चल सके?
हेगल हमें अपनी निजी आजादी और समाज की भलाई के बीच एक संतुलन बनाने के लिए कहते हैं।
और काम की गरिमा का विचार भी बहुत शक्तिशाली है। वो हमें याद दिलाता है कि सार्थक काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि संघर्ष या टकराव से डरने की जरूरत नहीं है,
वो विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
आज की उथल पुथल भरी दुनिया में ये सोचना बहुत राहत देता है।
और मेरे लिए सबसे हैरानी की बात मास्टर स्लेव डायलेक्टिक का नतीजा था, ये कि कैसे एक बजाहिर कमजोर दिखने वाली स्थिति में भी सच्ची आजादी के बीज छिपे हो सकते हैं।
मतलब शक्ति और स्वतंत्रता को हमेशा पारंपरिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
हाँ, काम और रचनात्मकता में एक मुक्ति देने वाली शक्ति होती है।
तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हेगल सही हैं कि इतिहास विरोधाभासों से आगे बढ़ता है तो आज हमारे समाज में वे कौन से बड़े टकराव या विरोधाभास हैं जो हमें भविष्य के एक नए सिंथेसिस की ओर धकेल रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।